Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishthanandaji Saraswati. Thank you. Om Namah Shivaya.
कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ खालीपन लग रहा है। ये जो भी कुछ अनुभूति साहब आपको हो रही है ना, अभी इसी क्षण उसके सुनने में वही वो परमात्मा की अनुभूति है। ये परमात्मा, ये अनावरण हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। परमात्मा जो ढका हुआ है भीतर, जो स्वात्मा अहम अहमतया जो स्फुरण हो रहा है, हमारी जो ऊपर की जो परत है रूप रस गंध की, हाँ, ये सब वासनाओं की, ये सब विचार की, ये सब बुद्धि की, ये अहंकार की, ओहो, ये परत थोड़ी हट गई है साहब। और थोड़ी जो हट गई ना, उससे ये आश्चर्य हो गया है। हम ऐसे देखिए, अभी आप, मैं आपके में से किसी को भी पूछो, आप क्या विचार कर रहे हैं अभी? अगर आप अटेंशन से सुन रहे हैं तो आप क्या विचार कर रहे हैं? आपको क्या विचार आ रहा है अभी? अभी ये क्षण आपको क्या विचार आ रहा है? ये क्षण क्या, ये क्या बोले? कुछ नहीं। ओहो हो, और एक क्षण भी विचार के बिना हम रह सकते हैं? अरे भाई, विचार के बिना नहीं रह सकते, इसीलिए तो यहाँ आते हैं कि ये विचार से कब छुटकारा हो। ये हमारा मन हमें नहीं छोड़ता है। और देखिए, ये क्या जादू हो गया, सबने ऐसा ऐसा किया कि भाई कुछ विचार नहीं आ रहा है। ओहो, तो इससे बड़ा आनंद क्या है कि आपको विचार नहीं आ रहा? क्योंकि विचार नाम और रूप के बिना विचार आ ही नहीं सकता। विचार आप वही चीज के कर सकते हैं जिसका नाम है, जिसका रूप है। और जितने जितने नाम रूपात्मक जो है, वो जन्मे हुए हैं, वो मरण धर्म है, वो संसार का कारण है। और आपने कहा हमें अभी कुछ नहीं विचार आ रहा, उसका मतलब ये है कि ये ओम शब्द उपनिषद अभी शुरू भी नहीं हुआ, उपनिषद की बात हम कर रहे हैं और इसने हमें रोक दिया है। ओहो, इससे बड़ा आश्चर्य, इससे बड़ा परम आनंद क्या हो सकता है कि कोई मुझे रोक ले? ओहो, मेरी इच्छाओं को रोक ले, मेरी वासना को रोक ले, मुझे पूरा पूरा बंद कर दे। और ये जो पूरा बंद हो जाने का जो आनंद है, अभी जो आपको जो थोड़ा सुकून मिल रहा है, जो हाश हो रहा है, जो आश्चर्य हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो भी आश्चर्य हो रहा है, वो आश्चर्य को पकड़ लीजिए। समझ में आया और नहीं आया उसे छोड़ दीजिए, जो हो गया उसे आप पकड़ लीजिए। तो वो जो पकड़ने का जो आनंद है, वही ये परमात्मा है। आपको बताना क्या है कि ये यात्रा हमें सबको करनी है। ये अनुभव परमात्मा का जब भी होगा, जो भी शरीर मन और बुद्धि की स्थिति में होगा, जो भी देश या काल में होगा, आपके भीतर ही होगा, इतना ही आपको बताना है। ये तो स्वाद चख लिया, थोड़ा अनावरण हो गया तो भीतर जो ये शांति, जो ये आश्चर्य, जो ये विचार न आना है, मात्र श्रवण, मात्र घर से यहाँ आके बैठने से इतना सब कुछ हो जाता है, जो परमात्मा के पीछे करोड़ों जन्म हो जाए तो भी तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम। ओहो, दूरदर्शम है, बड़ी मुश्किल से मिलने वाला ये परमात्मा अगर थोड़ा भी आपको चखने मिल जाए, यहाँ से आप कुछ नहीं लेके जाएंगे, इतना ही विश्वास लेके जाएंगे कि जब भी मिलेगा मेरे भीतर वो है, बात खत्म हो गई, बात हो गई। फिर वो मिलते ही जाएगा, वो मिलते ही जाएगा, आप आश्चर्यचकित। और फिर ये तो एक क्षण के लिए आप आश्चर्य हो गए ना, और किसी के बताने पर हो गए। एक क्षण ऐसी आएगी जब ये आश्चर्य के सिवाय की एक भी घड़ी नहीं होगी आपकी। और वो क्षण की आप जस्ट कल्पना कीजिए, और वो आनंद में, हाँ, यत् सौख्यं बुद्धिलेश लेशतई मे शक्रादयो निर्वृता, यच्चित्ते नितरं प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निवृतः, यस्मिन् नित्यसुखं बुधौ गलितधीः ब्रह्मैव न ब्रह्मवित्, यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ओहो परमात्मा, आपके नाम, आपके गुण सुनने पर, श्रवण करने पर, विचार करने पर, वो जो आनंद आ रहा है वो तो कैसा है, एक समुद्र की जो बूंद है, वो बूंद चखने पर जो पानी को जानने का आनंद आ रहा है, अगर वो समुद्र में ही मैं कूद जाऊं, मैं खुद वो बूंद जो है वो समुद्र में गिर जाए अगर, और वो पूरा समुद्र ही बन जाए, तो ब्रह्मैव न ब्रह्मविद। ब्रह्म को थोड़ा जाना तो इतना सारा आनंद हो गया, अगर मैं पूरा जान लूं, मैं ब्रह्म ही बन जाऊं, तो मैं कैसे आनंद को प्राप्त करूंगा। वैसे आनंद जिसने भी प्राप्त किया है, वो जो भी कुछ हो, चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुहु इत्येषा मनीषमम, वो चांडाल भी हो या कोई भी हो, वो मेरा गुरु हो। और हे परमात्मा, शंकराचार्य जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, मुझे ऐसे ही चरणों में रखना जिसने ये परम प्रज्ञा को प्राप्त कर ली है। क्यों? क्योंकि उसने जो प्राप्त कर लिया है, उसके संपर्क से ही मैं उसे प्राप्त कर सकूंगा, बाकी ये प्राप्तव्य नहीं है। अगर पानी की एक बूंद है तो उसको मैं पत्थर के साथ मिला दूं तो एकीकरण नहीं होगा। यह पानी की जो बूंद है उसे मैं दूसरे पानी की बूंद से मिला दूं तो ही एकीकरण हो सकता है। अगर ये समुद्र की एक बूंद है और यहाँ से एक नदी की बूंद लेती हूँ पानी की, और ये दोनों को एक करती हूँ, तो अभी क्या हो गया? ये दो बूंद मिलके एक हो गई, और वो क्या हो गई? वो समुद्र हो गए। पर एकीकरण कब हुआ? जब दोनों का प्रवाहित्व, दोनों में जलत्व एक है। और इसीलिए श्रवण का महत्व है, किसी गुरु मुख से सुनने का महत्व ऐसे है, क्योंकि जैसे हम है वैसे ही वो है, सब कुछ एक है। और जब उनका जो ज्ञान है वो मेरे ज्ञान से उसका एकीकरण हो गया, जब मैं सादा पानी लाती हूँ, एक ग्लास कटोरा पानी लाती हूँ समुद्र में डालने के लिए, तो वो पानी में समुद्र के क्या गुण है? भाई समुद्र के कोई भी गुण नहीं है। जलत्व के अलावा समुद्र का कोई भी गुण मीठे पानी में नहीं है। तो समुद्र बनने के लिए मीठे पानी को क्या करना पड़ेगा? समुद्र के गुण लाने पड़ेंगे, नमक डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, आपको नमक डालने की भी जरूरत नहीं। अरे ऑपोजिट गुण है, जो केमिकल ये पानी में है वो समुद्र में मिलने ही नहीं वाले हैं, तो भी चलेगा। भाई ये गांव का है तो भी चलेगा, हाँ ऐसा रंग का है तो भी चलेगा, जो जैसा जैसा उसका है। अरे भाई अच्छे पात्र में नहीं है, इसका पात्र तो खराब है, चलेगा, कुछ भी चलेगा। जरूर नहीं है सुवर्ण पात्र चाहिए, कुछ भी चलेगा, हाथ में भी होगा, पानी कोई भी दशा में होगा, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक वाला होगा। उसे करना क्या है? सिर्फ समुद्र तक यात्रा करनी है और कुछ नहीं करना है। हमारा ये जो कलेवर है, ये जो पात्र है, शरीर मन बुद्धि का जो संघात है, कोई भी जाति नीति कुल गोत्र कुछ भी होगा साहब, करना क्या है हमें? बस इसे प्रस्थान करवाना है, सब छोड़ छाड़ के इसे वही गंतव्य स्थान, उसको प्रस्थान कराओ, जैसे भी हो उसे सुनाओ, मनन चिंतन कराओ, उसके पास निधि ध्यासन कराओ, बस समुद्र तक की यात्रा, गंतव्य जाना ही है, प्रस्थान ही। इसीलिए प्रस्थान शब्द बहुत सुंदर है, ऐसे ही प्रस्थान करना है। और जैसे कहा कि वापस आना नहीं होता है, वैसे ही वो एक ग्लास जब पानी हम डाल देते हैं समुद्र में, अब वो वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। और आ भी सकेगा तो पूरे समुद्र के रूप में ही आएगा, हाँ फिर वो अपना जो रूप जो लेके गए थे उससे हम वापस नहीं आ सकते। ये कुछ प्रस्थान हमारे जीवन का भी ऐसा ही है, एक बार भी श्रवण कर लिए ना, कोई भी श्रुति का श्रवण, कोई भी गुरु से अगर एक बार भी श्रवण कर लिया, तो वो आपके भीतर जो भी परिवर्तन लाते है ना वो परमानेंट होता है। व्यवहार संबंधी जो भी परिवर्तन है ना वो परमानेंट नहीं होता, इससे बार बार करना पड़ता है। आंखों में काजल लगा दिया, ये परिवर्तन हो गया, तो एक बार काजल लगाया तो परमानेंट आंखें ऐसी अच्छी दिखनी ही चाहिए, ये शेप दिखना ही चाहिए, परमानेंट नहीं, रोज लगाना पड़ता है। स्वाद एक बार ले लिया तो ले लिया, नहीं जो अच्छा लगे वो स्वाद रोज लेना पड़ता है, तो ही हमें अच्छा लगता है। खाने के बाद किसी को होता है आदत, ये चाहिए खाने के बाद, कुछ कुछ मुंह में कुछ ऐसा चाहिए, वो टिपिकल स्वाद आपका होता ही है भाई, ये रोज करना पड़ता है। व्यवहार संबंधी जितनी जितनी जो हमारी आदतें हैं उसे रोज पूर्ण करनी पड़ती है। और यहाँ एक बार हुआ हो हुआ, ये परिवर्तन आपके साथ परमानेंट जाएगा। आप कहीं भी रहेंगे और ये जो परिवर्तन है ना, आपको चैन से बैठने नहीं देगा। अब ये जो परिवर्तन है, अब ये जो श्रवण कर लिया, अब क्या होगा? अब आप जब भी भोग करेंगे, भोग तो होता ही रहेगा, प्रारब्धवशात वो विषय जो है, विषय का संपर्क आपके शरीर के साथ होना ही है, क्योंकि भोगायतनम इदम शरीरम। ऐसा मत सोचना कि ये जो भोग है ज्ञान होने के बाद बंद हो जाएंगे, विषय बंद हो जाएंगे। विषय कभी भी नहीं बंद होंगे, जब तक शरीर है विषय का बंद होना नामुमकिन है। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि अरे भाई, कोई मर जाए तो मर जाना यानी क्या? और इसीलिए ज्ञान होने के बाद कोई मरता नहीं है, ये इसी कारण। हम जिसे मरण कहते हैं वो हकीकत में क्या है आप समझ लीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो प्रारब्धवशात भोग का आना है वो इतना मैकेनिकल है, वो इतना मैथमेटिक्स वाला है कि उसके साथ आपका कोई निस्बत ही नहीं है, वो अपने आप चलता रहेगा। मृत्यु यानी क्या, इतना भी आप समझ लेंगे तो मृत्यु का डर तो चला जाएगा। और ये भोग जो आते रहते हैं और भोग का नहीं आना होता है वो भी आपको समझ में आएगा, तो उसके प्रति जो आपकी गति जो है वो रुक जाएगी। देखिए, हम सबको पता है कि गिने हुए संचित जो कर्म है उसमें से सिलेक्टेड गिने हुए कर्म जो है, प्रारब्ध कर्म जिसे कहते हैं, वो हम लेके आए हैं और चल रहा है, बराबर। इतना तो आप मानते हैं ना, 1,00,000 कर्म लेके आए, तो अब आप ही मुझे जवाब दीजिए कि ये शरीर जो है, 1,00,000 कर्म लेके हम आए हैं तो शरीर कितने कर्म भुगतेगा? हाँ, 1,00,000, बराबर है। तो मृत्यु का हुआ साहब, ये 1,00,000 कर्म खत्म हो गए। अच्छा, 1,00,000 कर्म खत्म हो गए हमारे, तो फिर शरीर क्या होगा, फिर शरीर क्या भुगतेगा? तो प्रारब्ध कर्म का खत्म हो जाना ही मृत्यु है। अब मृत्यु अच्छा या बुरा, दुखदाई या सुखदाई, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इतना ही, इतना सिंपल। देखिए, ये शास्त्र जो है ये क्यों पढ़ने चाहिए? हाँ, ये थोड़े थोड़े सिद्धांत आप समझ लेंगे ना, थोड़ी ये टिप्स ले लेंगे ना प्रैक्टिकल, तो जीवन सरल हो जाएगा, जीवन में एक हल्कापन आ जाएगा, एक खुशबू आ जाएगी, भारीपन नहीं लगेगा। प्रारब्ध कर्म खत्म हुआ तो अभी भोगायतनम इदम शरीरम, ये शरीर जो है वो तो माध्यम है, कारण है, तो अब उसका प्रयोजन नहीं रहेगा। उसका काम इतना ही है जितने कर्म, तो भाई कर्म खत्म हो गए, पाप या पुण्य कोई भी कर्म खत्म हो गया तो ये एंड कर्म हो गया, 1,00,000वां कर्म हो गया, तो यहाँ ये शरीर अब क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, इसलिए बंद होता है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो गया इसलिए अब क्या होगा, उसकी इच्छा होगा। देखिए, ये भ्रांति में से निकल जाइए, पिताजी की ये इच्छा थी, वो इच्छा थी और वो चल बस है। नहीं बाबा, वो इच्छा की हुई थी, उसका प्रारब्ध नहीं बचा था, ध्यान रखिए। उन्होंने करोड़ इच्छा की, उससे क्या हुआ? अवगति कभी भी नहीं होती कोई जीव की। अकाल मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं है, है करोड़ों में एक कोई अपवाद, पर अकाल मृत्यु जैसा कुछ हो नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह सिद्धांत फिर जाएगा। फिर सिद्धांत क्या है? प्रारब्ध का कर्म खत्म हो गया और यहां शरीर चला गया, तो बस इतनी ही सरल ये बात है। तो हम कहना चाहते हैं कि ये ज्ञान श्रवण करने के बाद जो विषय का आना आपके जीवन में है वो ये प्रारब्ध के वशात है, वो गिने हुए कर्म है, वो आते ही रहेंगे, शरीर के साथ संजोग होते ही रहेंगे। फिर क्या होगा? अगर आपने अपने आप को समुद्र जान लिया तो समुद्र में फिर कितने ही जो तरंगे हैं वो आएगी, बड़ी तरंग आएगी, छोटी तरंग आएगी, ये जो तरंग का आना जाना है, उठना है गिरना है, वो होता ही रहेगा। बस ऐसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक ये जो तरंगे हैं जीवन में वो आती ही रहेगी जाती ही रहेगी, उससे समुद्र विक्षिप्त जैसे नहीं होता है वैसे ही मैं विक्षिप्त नहीं होती हूँ जब मैंने जान लिया कि मैं समुद्र ही हूँ। बस ये श्रुति जो है आपके भीतर श्रवणात्मक ज्ञान उत्पन्न करके ये परमानेंट परिवर्तन कर देती है और आप रुक जाते हैं, अब जहाँ है वहाँ ही रह जाते हैं। तो अगर लग रहा है कि ये जो उपनिषद जो है कुछ तो है अंदर, नहीं तो उसके ऊपर चर्चा करने के लिए कौन आता, क्यों इतने ऋषि मुनि अपना समय ये चर्चा में डालते, उसके ऊपर शंकराचार्य जी भाष्य भी क्यों लिखते, ये मांडुक्य उपनिषद विशेष क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ शंकराचार्य जी ने भाष्य नहीं लिखा है, शंकराचार्य जी के दादा गुरु शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पादाचार्य के गुरु स्वामी गौड़पादाचार्य जी, और ये जो गौड़पादाचार्य जी है ओम नारायणम पद्मभुवम वशिष्ठम शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम गोविंद योगिंद्र मथास्त शिष्यम। ठीक है, तो ये किसके किसके शिष्य हो गए भाई, शुकदेव जी के शिष्य हो गए। व्यासम शुकम गौड़पदम महांतम, तो ये जो गुरु परंपरा से ये आया हुआ है, ये किसी के मन में नहीं आ गया कि लिख सके, ये लिखने से या बैठने से प्राप्त होने वाली नहीं है, ये सब अनुभवात्मक जो मंत्र जो है वो ध्यान से ही प्राप्त होते हैं। न चक्षुषा गुरु, ये कहाँ लिखा है, मुंडक उपनिषद में इसका जवाब दे दिया है। अगर आश्चर्य हो कि ये सब किसने लिखा है, कहाँ से आया, मनुष्य ने ही लिखा है नो डाउट, पर उसे आया कहाँ से, न चक्षुषा गृह्यते नान्य ही देवैः तपसा कर्मणावा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः ततस्तुतम पश्यति निष्कलम ध्यायमानः, ध्यान करने से ही ये प्राप्त होता है। तो ध्यान में निदिध्यासन के बाद की जो अवस्था है, ध्यान याने जब परमात्मा का एकत्व हो जाता है, ध्यान याने आपके स्वभाव में आप बैठ जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, तब जो भी विचार आया ना, जो भी अनुभूति हुई वो लिखी हुई है और हमें वहां तक पहुंचना है। ये जो अनुभूति है ना, ये अनुभूति क्या है बताएं? ये कोई ऐसी व्यक्ति के भीतर से झलकी हुई है जिसे अब कोई भी रूप देखने की इच्छा नहीं है। और हमारे साथ कंपेयर आप करते जाइए, इसका वजन, कोई भी रूप ये व्यक्ति को नहीं देखने की इच्छा है, कोई भी शब्द का श्रवण करना इसकी इच्छा नहीं है, स्पर्श की इच्छा नहीं है, रूप की इच्छा नहीं है, रस की इच्छा नहीं है, मन से कोई भी कल्पना करने की इच्छा नहीं है, बुद्धि से इस व्यक्ति को एक भी निर्णय अब नहीं लेना है, सब कोई कर्ता भाव भोक्ता भाव नहीं है, कुछ नहीं है और इसकी अनुभूति है और हमें वहां तक पहुंचना है, हमें उसकी अनुभूति से हमारी अनुभूति को जोड़ना है। थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो ये तैयार करना पड़ेगा ना, हाँ थोड़ा तो अधिकार प्राप्त करना ही पड़ेगा। और ये जो अधिकार जो है, शास्त्र की परिभाषा में कोई भी ग्रंथ हम जब शुरू करते हैं तो अनुबंध चतुष्टय आता है, यानी अधिकारी संबंध विषय और प्रयोजन, कोई भी पुस्तक शास्त्र की शुरू करते हैं तो ये चार चीजें आ जाती है। यहां शंकराचार्य जी उपनिषद के मंत्र शुरू करने से पहले संबंध भाष्य लिखना शुरू कर देते हैं और उनके संबंध भाष्य में उन्होंने ऐसा कहा कि जो उपनिषद ओम इति एतत् अक्षरम इदगम सर्वम, यानी ओम ही जो है वो अक्षर है, अक्षर ये यानी ये अक्षर शब्द ही पूरा वेदांत आ गया अक्षर शब्द में, जो क्षर नहीं होने वाला है, जिसका विनाश नहीं है, जो नित्य है, तो भाई अनित्य क्या है, जो नित्य तीनों काल में है और अपरिवर्तनशील है, तो फिर तीनों काल में जो है पर अपरिवर्तनशील नहीं है वो क्या है, तो देश काल और वस्तु से बद्ध है, जन्मने वाला और मरण धर्मा है, जितने जितने जो संसार के नियम है वो सब जगत के कारण के नियम वो लग जाते हैं और उससे पर ये परमात्मा अक्षर है, इदगम सर्वम ये करके जो निर्देशनीय है वो ये परमात्मा है। तो शंकराचार्य जी यहाँ संबंध भाष्य में बता रहे हैं कि इसका अनुबंध चतुष्टय जो है अधिकारी संबंध या विषय मुझे अलग से देने की जरूरत नहीं लगती है। उन्होंने लिखा है ये क्यों नहीं लगती, क्योंकि ये वाक्य ही सब कुछ कह देता है कि अगर ओम ही सब कुछ है तो उपनिषद या ऋषि हमारे पास क्या अपेक्षा रखते हैं कि ये सबको आप एक ही मानो। ये प्रयोजन है भाई, विषय क्या है, किसको मैं एक मानूं, ओम को। कौन एक मानेगा, जो ओम को जानने का अधिकारी होगा वो उसे जानेगा। और प्रयोजन क्या है, सब कुछ सर्वत्र ब्रह्म की भावना है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ये प्रयोजन है। तो ये अनुबंध चतुष्टय हो ही गया। तो बोले कि ये जानने के बाद होगा क्या, तो शंकराचार्य जी ने एक दृष्टांत दिया है। इनके दिए गए दृष्टांत जो है इतने सरल होते हैं, उन्होंने एक ही दृष्टांत यहाँ दिया है कि जैसे रोगी को अपने रोग की मुक्ति के बाद जो स्वास्थ्य रूपी सुख मिलता है, ऐसा ही कुछ ये द्वैत प्रपंच में दुखी और संतप्त जो जीवात्मा है, वो द्वैत प्रपंच में संतप्त जीवात्मा को अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान जब होगा, अद्वैत ब्रह्म के बारे में जब वो सुन लेगा, जब उसे उसकी प्राप्ति हो जाएगी, तब जो सुख और आनंद जैसे रोगी को रोग मुक्ति के बाद आता है, ऐसे ही द्वैत प्रपंच की निवृत्ति के बाद जो आनंद आता है वही परमात्मा है, और ऐसा ही आनंद ये सुनने से अपेक्षित है। यत्र ही द्वैत, फिर वो दृष्टांत देते हैं बृहदारण्यक उपनिषद का। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, शंकराचार्य जी अभी उनके ये रोगी के दृष्टांत को अब वो समझा रहे हैं, कारण दे रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा। भाई मैं नहीं कह रहा, उपनिषद ने कहा है कि द्वैत में दुख है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, उपनिषद में कहा है। क्योंकि किसी किसी को द्वैत में भी दुख नहीं लगता है। अभी मूर्ता की पराकाष्ठा क्या कि द्वैत में ही दुख नहीं लगेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। द्वैत में आपको दुख कुछ तो हमारी तरफ से होना चाहिए ना। आप कंप्लेन भी करते आओ, कुछ तो कहो कि ये ठीक नहीं है, तो ही कुछ इलाज हो सकेगा। रोग है पर कोई डॉक्टर घर में तो आके ऐसा इलाज नहीं करने लगेगा ना, आपको कंप्लेन तो करनी पड़ेगी ना घर के लोगों को पहले। आप क्या कहेंगे, आपको कुछ हो रहा है और बताएंगे ही नहीं तो इलाज कैसे होगा, इलाज होगा क्या, नहीं इलाज नहीं होगा। किसी को तो बताना पड़ेगा ना कि रोग है दुख है, फिर औषधि के तरफ आपका गमन होगा। वैसे ही ये द्वैत प्रपंच में दुख का अनुभव होगा। आपको दुख का अनुभव हो रहा है कि नहीं, तो हाँ जब इच्छित चीज नहीं मिलती है या मिलके चली जाती है तो दुख होता है, अनिच्छित चीज मिलती है तो भी दुख होता है। तो ये दुख का जो क्षणिक हमें विचार आ गया, ये विचार ही हमें ये दुख की मुक्ति के उपाय के लिए दौड़ना सिखा देगा। इसी प्रकार भाई हमने देखा है बृहदारण्यक उपनिषद में, यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितरम इतरम शृणोति जिग्रति विजानाति। तो ये द्वैत होता है तब दुख, देखिए बुखार आता है, बुखार रूपी दुख हुआ तो असर क्या होगी, असर क्या होगी, शरीर का गर्म हो जाना असर होगी ना, दुख बुखार का सिम्टम। वैसे ही भाई द्वैत का सिम्टम क्या है, आप कहते हैं द्वैत में दुख है, हमें क्या पता द्वैत क्या है, द्वैत का रूप क्या है। तो द्वैत का रूप बताते हैं बृहदारण्यक में कि जब कोई किसी को देखता है ना तो वो द्वैत है भाई, कोई किसी को सुनता है तो वो द्वैत है। तदितरम इतरम विजानाति, इतरम इतरम अभिवदति, तो वो द्वैत का रूप है, ये सिम्टम है। और ये सिम्टम आप में है तो समझ लो द्वैत है, और उससे जो छुटकारा है, जैसे दुख की मुक्ति रोग की मुक्ति औषध है, रोग का इलाज औषध है, ऐसे ये द्वैत का इलाज अद्वैत है, अविद्या है, अविद्या का इलाज विद्या है, जो हम प्राप्त करते हैं ये विद्या हम सबको सुगमतया प्राप्त हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना। कल इसके ऊपर फिर हम विचार करेंगे।
हरि ओम। आज 21 फरवरी गुरुवार मां सुदी पूनम। अब शांति पाठ होगा। हरि ओम।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।